भागवत सार की श्रृंखला में 29वें अध्याय पर चर्चा है, चौथे स्कंद के। इसके 2 श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। अथात्मनोर्थभूतस्य यतो नर्थ परंपरा संस्तुति तस्त व्यक्षेदो भक्त्या परमया गुर वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति। अथात्मनोर्थभूतस्य यतो नर्थ परंपरा संस्तुतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुर वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति। अथात्मनोर्थभूतस्य यतो नर्थ परंपरा संस्तुतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुर वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहिता सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति। अतः आत्मनः जीवका अर्थभूतस्य वास्तविक रुचि वाले का यतः जिससे अनर्थ अवांछित वस्तुओं का परंपरा श्रृंखला संस्कृति संसार तत् उसका व्यवच्छेद विच्छेद रुक या रुकना भक्त्या भक्ति से परमया शुद्ध गुरो परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि को वासुदेवे वासुदेव में भगवती भगवान भक्ति योगा भक्ति समाहितः एकाग्रचित सद्धृचीनेन पूर्ण रूप से वैराग्यम विरक्ति ज्ञानम पूर्ण ज्ञान च तथा जनयिष्यति प्रकट करता है पूरा हो गया ना श्लोक उसमें फिर से दिया हुआ डबल दे दिया अनुवाद और तात्पर्य से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है तात्पर्य कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामृत को अपनाना और भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव हैं। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है ये अवांछित वस्तुएं इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षाएं हैं इस प्रकार मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम के रूप में वर्णित है जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता जैसा कि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के सातवें अध्याय के छठे श्लोक में कहा गया है अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ हैं भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं जानता अतः विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे तक चलती रहती हैं इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी होती है इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था गुरु न सस्यात् न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम् जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर ना निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि गुरु का पद स्वीकार न करे। यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला है। यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। यह क्रिया इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगकर ही रोका जा सकता है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मनुष्य को देवताओं की सेवा ना करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। भक्ति का शुभारंभ नवदीप दीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक विस्तारित है। सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है तो वह शरीर की सेवा से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण का चिरदास है। ज्यो ही वह भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है, उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्तिरित्वन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति ही। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, जैसे सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तिलांजलि दे देता है। जैसा कि भागवत में व्याख्या की गई है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतु के ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लगना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। नारद मुनि पुरंजन उपाख्यान कहने के बाद पिछले अध्याय के अंत में राजा से कहते हैं प्राचीन परिषद से कि ये जो मैंने तुम्हें कथा सुनाई ये दृष्टांत था। तो अब इस अध्याय में राजा नारद मुनि से कहते हैं कि आपने जो दृष्टांत बताया मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, क्या आप बात कर रहे हैं, पुरंजन और एक स्त्री मिली, शहर मिला, उसमें रहने लगा, जंगल गया, चंद्रवेग का आक्रमण हुआ, तो ठीक से समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझाइए। तो फिर इस अध्याय के करीब 25 श्लोकों में, पहले 25 श्लोक में नारद मुनि ने जो पिछले अध्यायों में पुरंजन की कथा कही है उसको वो समझाते हैं कि क्या है पुरंजन, कौन है ये, नौ द्वारों वाला शहर का क्या है, इच्छाएं क्या हैं इत्यादि। जैसे उन्होंने कहा चंडवेग के साथ 360 गंधर्व आए, 360 गंधर्वियां आई, तो ये सारा वर्णन उन्होंने किया। तो अब इसको समझा रहे हैं। तो पहले 25 श्लोकों में उन्होंने केवल यही समझाया, क्योंकि हम लोग कथा कहते कहते उसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए विस्तार से फिर से इनकी चर्चा अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा लंबा अध्याय है, तो प्रयास करना है आज ही इसको समाप्त करने का। तो इन श्लोकों को हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, चंडवेग अर्थात काल, 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां अर्थात 360 दिन और 360 रात, फिर मन, इंद्रियां, शरीर, नौ द्वारों वाला शहर, शरीर, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो नारद मुनि यही समझाते हैं। और फिर 26वें श्लोक से आगे नारद मुनि इस भौतिक जगत का अभी तक अप्रत्यक्ष वर्णन किया था कैसे जीव फंसता है, अब सीधा वर्णन करते हैं। तो अभी तक उन्होंने ये सारा प्राचीन परिषद को समझा दिया कि जो जो मैंने कहा वो क्या है, और अब वो सीधा वर्णन करते हैं आगे कुछ श्लोकों में कि कैसे जीव का भौतिक अस्तित्व बना रहता। वैसे जब उन्होंने पुरंजन के उपाख्यान का वर्णन किया तो उन्होंने ये भी कहा कि जीव अलग अलग शरीर धारण करता है, एक पाद, द्वि पाद, तीन पाद, चव, चतुष्पाद, या फिर कई सारे, मतलब एक पैर वाला, दो पैर वाला, तीन पैर वाला, चार पैर वाला, कई पैर वाला, बिना पैर वाला, ये सारे प्राणियों का वर्णन वो करते हैं कि ऐसे जीव घूमता है। और अब ये वर्णन करने के बाद भौतिक जगत में सीधे अब वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जीव फंसता है। पहले तो उन्होंने घुमा फिरा कर कह दिया, तो अब सीधे वर्णन कर रहे हैं कि जीव को भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, बहुत थोड़ी सी, और जीव जब उसका दुरुपयोग करता है, भौतिक जगत के गुणों में फंस जाता है, भगवान को जब भूल जाता है तो भौतिक गुणों में बंध जाता है, और भौतिक गुणों में बंध कर फिर अलग अलग शरीर धारण करता है, अलग अलग स्थितियों को धारण करता है। नारद मुनि तुलना करते हैं जीव की एक कुत्ते से, कि जैसे एक सड़क का कुत्ता होता है, वो हर दरवाजे पर जाता है, कहीं पर उसको लात मिलती है, कोई मारता है, कहीं उसको कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है, इसी तरह जीव उस कुत्ते की तरह है जो अलग अलग शरीरों में जाता है थोड़ा थोड़ा समय के लिए, कहीं पर उसको बड़ा अच्छा मिलता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, कहीं पर गरीबी में पलता है, मतलब लात पड़ जाती है। तो नारद मुनि कहते हैं है ये ही, देखिए हमारी तुलना कैसे कर दी नारद मुनि ने, इतना तो नीचे नहीं गिराना चाहिए था नारद मुनि को, लेकिन अवस्था यही है, वो भी क्या करें, जब सत्य बोला जाता है तो कड़वा लगता है, लेकिन नारद मुनि जैसे भक्त बोलते भी हैं, अभी तक तो घुमा फिरा कर सत्य नहीं बोला सीधा, लेकिन अब जब तैयार हो गया पुरंजन अर्थात राजा प्राचीन बर्हिषत समझने के लिए और उसको समझा दिया उन्होंने, अब सीधे वार कर रहे हैं, अब सीधे। ये देखिए ऐसे कभी कभी गुरु का कार्य होता, गुरु का कार्य है काटना, बंधन को काटना, उसके लिए कभी कभी ऐसे बोलना पड़ता है, क्योंकि अभी भी नारद मुनि देख रहे थे कि बर्हिषत समझा नहीं है ठीक से, अभी तक अनासक्त नहीं हुआ है, इसीलिए उन्हें सीधे कहना पड़ा। जैसे महाभारत में हम लोग देखते हैं कि धृतराष्ट्र आसक्त था, सब कुछ हो गया, पुत्र मर गए, फिर भी बना रहा, छोड़ने तैयार नहीं है, तो विदुर ने आके क्या कहा था, कुत्ते हो भीम के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो तुम। बस देखिए कैसे कहा। अभी तक तो जब तक राज्य के पहले बड़े आदर से कि महाराज आपको ये नहीं करना चाहिए, महाराज आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अब सीधे ही कह दिया। इसी तरह नारद मुनि ने भी अब सोचा कि अब ये तो इससे बहुत घुमा फिरा कर कहा है, फिर भी पूर्ण रूप से समझा नहीं है, इसीलिए उन्होंने सीधे कहा कि ये भौतिक जगत में बंधन है कुत्ते की तरह, बस एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाते हैं। और उसी में व्यक्ति जब कर्म कांडों में लगता है तो वो क्या है, नारद मुनि कहते हैं कि वो इस प्रकार है कि जैसे जैसे थोड़ा सा बोझ सर पर होता है व्यक्ति के, वो थक जाता है बोझ उठाते उठाते तो अपने कंधे पर रख लेता है। तो एक बोझ उसका है सर पे, उसको कंधे पर रख लिया और सोचता है थोड़ा आराम मिला। लेकिन अगर बोझ सर से कंधे पर रखा जाए तो बोझ तो फिर भी शरीर पर है ना, जब तक बोझ को फेंका नहीं जाएगा तब तक क्या लाभ है। तो नारद मुनि कहते हैं ये जो कर्म कांड से तुम सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो ये इसी तरह, थोड़े समय का सुख सर से उठा के कंधे पर रख लिया, बंधे तो हुए ही हो, इस जगत के बाहर तो नहीं जाओगे, शरीर मिलेगा ही। इसीलिए वो कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति स्वप्न में कोई बुरा स्वप्न देख लेता है तो बुरे स्वप्न के बाहर आने के लिए और कोई बुरी चीज या और कोई स्वप्न देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर बुरे स्वप्न से उस बुरे स्वप्न के अनुभव से कष्ट से बाहर आना है तो क्या करना है, जागना है। जब तक व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं आता तब तक वो स्वप्न के भय से बाहर नहीं आ सकता। जैसे रात के समय बहुत भयभीत स्वप्न देखा जा रहा है, हम डर गए, पसीने पसीने हो गए, लेकिन हम उस सपने में जब तक रहेंगे और उसी सपने में कुछ और एक सपना देखकर हम उसके बाहर नहीं आ सकते। हमें आंखें खोलनी है, जागृत होना है, तब पता चलेगा कि अरे ये कुछ नहीं है, मैं सुरक्षित हूं, शेर नहीं भाग रहा मेरे पीछे, मैं सुरक्षित हूं। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसी तरह जब हम कर्मकांड करते हैं तो ये है कि एक स्वप्न में और एक स्वप्न देखकर उसको दूसरे स्वप्न से बचने का प्रयास कर रहे हैं। है दोनों स्वप्न, आप स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, आप स्वर्ग कहीं पर भी जाओ, है तो स्वप्न। क्यों स्वप्न है जीव के लिए, क्या ये सत्य नहीं है? स्वप्न इसलिए है क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय है। दरअसल जीव अपने आप को शरीर से पहचान कर रहा है, केवल इसीलिए वो स्वप्न है। जिस जीव ने अपने शरीर से पहचान अलग कर ली उसके लिए स्वप्न नहीं, उसके लिए कोई कष्ट नहीं, उसको स्वर्ग में जाना और नरक में जाना से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां रहता है भगवान की भक्ति करता है। और इसीलिए नारद मुनि कहते हैं फिर आगे के श्लोकों में, 33वें श्लोक के आगे, भक्ति यानी जो उन्होंने अभी तक बताया कि ये कष्ट है जीव को, उसका उपाय वो देते हैं भक्ति। तो जागने के अर्थ क्या है, कृष्ण भावना मृत तक जागना। तो जैसे उन्होंने पहले कहा कि व्यक्ति एक कुत्ते के समान होता है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि व्यक्ति को कृष्ण का कुत्ता बन जाना चाहिए, अर्थात कृष्ण भावना मृत में जागृत हो जाना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी एक भजन में लिखते हैं, वैष्णव ठाकुरों के प्रति तुमार कुकुर, आपका कुत्ता बनना चाहता हूं। तो प्रभुपाद कहते कृष्ण का कुत्ता बन जाना चाहिए, वैसे ही कुत्ता तो बनना ही है। नारद मुनि ने कहा वैसे ही आपको कुत्ता बनना है, तो किसी के दरवाजे जाने से अच्छा वैष्णवों के दरवाजे का कुत्ता बन जाइए या कृष्ण का कुत्ता बन जाइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि केवल भक्ति, और वो भी किसकी भक्ति, वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः, और किसी की नहीं, बहुत स्पष्ट वासुदेव कृष्ण की भक्ति की करनी है। ये सब जो तुम देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उसका कोई लाभ नहीं है, छोड़ो इसको। अब नारद मुनि जोर से कह रहे हैं, अभी तक सुन नहीं रहा है पुरंजन या राजा प्राचीन बरहिषद, तुम नारद कहते छोड़ो, नारद मुनि कहते क्या पकड़ के रखा है इसको, क्या मिलने वाला है इससे। जीव घूमता रहता है इस जगत में ऊपर और नीचे ब्रह्मांड में, कर्म कांड करके ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचोगे, उसके बाद क्या, फिर मृत्यु है और फिर से पुनर्जन्म है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं इसको छोड़ो, वासुदेवे भगवती, एक ही उपाय है इसका, भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, उसी के द्वारा ज्ञान और वैराग्य आपके हृदय में आएगा, तब आप जान पाओगे सही ज्ञान को, सही चीज को, केवल भक्ति। और कैसे करना है, नारद मुनि इस श्लोक के बाद वाले श्लोक में कहते हैं, श्रवण के द्वारा। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल भगवान के कथाओं के श्रवण में रुचि बढ़ा लेता है, बारंबार उसको सुनता है, हर रोज उसका श्रवण करता है, निश्चित भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भक्ति की विधि नारद मुनि देते हैं कि बस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए श्रवण आप कीजिए, ताकि इस सारी चीजों से आप बाहर आ सकें। और इतना कहने पर भी नारद मुनि ने अब देखा कि प्राचीन बरहिषत के हृदय में एक बात आ रही थी कि ठीक है, नारद जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे भक्ति करनी चाहिए, लेकिन लड़कों को आने देते हैं, लड़के गए हुए ना तपस्या करने, तो वो आ जाएं, फिर उनका शादी वादी हो जाए, सेटल हो जाएं, फिर मैं जाकर सब कुछ छोड़ दूंगा। तो नारद मुनि ये कहना चाहते थे तब तक नहीं, अभी, इतना समझाया। नारद मुनि इतने स्ट्रांग प्रचारक हैं, तो उन्होंने सोचा मैंने प्रचार करने के बाद ये छोड़ नहीं रहा है, और करना चाहिए। तो नारद, ऐसा हमारा प्रचार होना चाहिए। नारद मुनि ने छोड़ा नहीं कि ठीक है अब मैंने इतना समझा दिया, ये नहीं समझ रहा है, अभी भी इंतजार कर रहा है कि पुत्र आएंगे तब करूंगा, ठीक है मेरा कर्तव्य हुआ मैंने किया, नहीं। नारद मुनि ने और एक कथा सुनाई उसको, अभी तक सुधरा नहीं है एक कथा सुनकर, तो और एक कथा सुनाने लगे। नारद मुनि ने कहा कि जान लो, एक हिरण अपनी हिरणी के साथ वो घास खा रहा है, बड़े आराम से वो घास खा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो देख नहीं रहा है कि सामने शेर खड़ा है उसको खाने के लिए, वो ध्यान नहीं दे रहा है उस शेर पर, और पीछे एक शिकारी खड़ा है तीर लेकर उसको मारने के लिए, और ये बड़े आराम से घास खा रहा है, हिरणी के साथ घूम रहा है, और जो मधुमक्खी इत्यादि या भंवरा है तो भंवरे की बहुत मधुर धुन को सुन रहा है, आनंद ले रहा है। तो एक और कथा सुना दी, और फिर नारद मुनि ने कहा वो तुम हो, वो तुम हो जो इतने आसक्त हो, क्योंकि वो जो हिरण है वो देख नहीं रहा है कि सामने शेर खड़ा है। तो तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति जो ये सब कर्म कांडों में लगा है भोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए, बहुत सुंदर वो भंवरों की आवाज अर्थात अपनी पत्नी बच्चों की आवाज में बड़ा आसक्त होता है, घास खाता रहता है, थोड़ा बहुत आनंद लेता रहता है, भूल जाता है सामने काल है, शेर खड़ा है मारने के लिए, तैयार है मृत्यु, भूल जाता है व्यक्ति। और इतना ही नहीं, पीछे से शिकारी खड़ा हुआ है मारने के लिए, यमराज तीर लेके तैयार हैं, हर रोज निकट आ रहे हैं वो तीर लेकर, और हम बहुत आनंद है। तो नारद मुनि कहते हैं ऐसे व्यक्ति हो तुम, मृत्यु कभी भी आ सकती, तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम घास खाने की इच्छा कर रहे हो, अभी छोड़ो, इसी समय छोड़ो सब कुछ, श्री कृष्ण का आश्रय लो। तो ऐसे उन्होंने बताया, तब प्राचीन वर्षीय को कुछ समझ में आया कि हाँ ये तो अभी छोड़ने को बोल रहे हैं, मैं सोच रहा था थोड़े समय बाद छोड़ेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद तक तो मृत्यु आ जाएगी, भक्ति कब करेंगे, नारद मुनि ये समझा रहे थे, अभी सब बंद करो, जाओ वन में और छोड़ो सब, भक्ति करो भगवान की, वासुदेवे भगवती। तो उस समय राजा प्राचीन भरिषित ने फिर कुछ एक प्रश्न किया नारद मुनि से, ये 56वें श्लोक से आगे आता है। तो उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न किया, पहले उन्होंने कहा कि आपने जो ज्ञान दिया है अब मुझे समझ में आया सही ज्ञान क्या है, लेकिन ये जो आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने मुझे ये कर्मकांड करने के लिए कहा था, ये भी महान ऋषि मुनि है, लेकिन इन्होंने मुझे गलत ज्ञान दिया, ठीक से नहीं बताया मुझे कि क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, उन्होंने मुझे कहा, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था कर्मकांड, लेकिन आज समझ में आया। तो इसको कहते हुए वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त करना कितना कठिन है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जैसे वो कह रहे थे मेरे जो आचार्य, उन्होंने मुझे ये क्यों समझाया, तो ये बतला रहे थे कि उनको भी सही ज्ञान की समझ नहीं है। जब तक हम भगवान की भक्ति एक प्रामाणिक गुरु के निर्देश में नहीं करते, हमें जीवन की सही समझ नहीं आ सकती, चाहे कितना ही बड़ा ऋषि मुनि क्यों ना हो जाए। तो इसीलिए राजा प्राचीन परीक्षित कहने लगे कि इतने बड़े बड़े साधुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, या भगवान का, या जीवन के उद्देश्य का। और फिर उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि आपने बताया कि ये चलता रहता है, आगे जाएंगे, प्राणी मारेंगे, नरक में जाना इत्यादि, ये सब आपने वर्णन किया। लेकिन नारद मुनि, मेरा प्रश्न है कि जिस शरीर से हम कार्य करते हैं, मृत्यु के समय शरीर समाप्त तो हो जाता है, तो फिर कर्मों का फल कैसे मिलता है? शरीर तो समाप्त हो गया, जिसने कार्य किया वो शरीर समाप्त हो गया, फिर कर्मों का फल कैसे? मतलब उनका प्रश्न था कि जब जीव दूसरा शरीर ले लेता है, तो उस शरीर ने कोई गलत कार्य नहीं किया अभी तक, तो फिर उसका जो पिछले शरीर ने कार्य किया था, उसका इस शरीर में दंड क्यों? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्यादातर लोग पूछते हैं इस प्रश्न को कि अरे पूर्व जन्म में हमने क्या किया, एक तो हमें पता भी नहीं है, और कुछ किया था पूर्व जन्म में, वो पुराना शरीर सब खत्म हो गया, अब क्यों हमें दंड मिल रहा? तो ऐसे प्रश्न वो लोग करते हैं। तो दंड क्यों दिया जा रहा है, बड़ा प्रश्न किया नारद मुनि से, और नारद मुनि ने फिर उत्तर देना प्रारंभ किया। बहुत लंबा उत्तर नारद मुनि ने दिया समझाने के लिए कि जिसको वो कह रहे हैं वो कैसे वो पूछ। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि शरीर समाप्त हो गया तो फिर कैसे फल मिलता है? तो नारद मुनि ने समझाया कि तुम्हारा एक शरीर नहीं है, तुम जिस शरीर को समाप्त हुआ समझ रहे हो वो एक शरीर है, इसके अलावा दूसरा सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और वो सूक्ष्म शरीर इन सारी चीजों को, तुम्हारे सारे कर्मों के फलों को, तुम्हारे सारे जो प्रभाव हैं कार्यों के, उनको लेकर जाता। तो मानो राजा प्राचीन भरिषत ने पूछा हो कि अरे क्या प्रमाण है ये दूसरा जन्म होता है, आप बोल रहे हैं दूसरा जन्म होता है, क्या प्रमाण? तो उन्होंने कहा कि जैसे इंद्रियों के कार्यों को देखकर हमें व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसे पता चलेगा, वो कैसे अपने शरीर से कार्य कर रहा है, इसको देखकर उसका स्वभाव समझ में आता है कि ऐसा होगा, व्यक्ति ऐसा है। मान लीजिए कोई बहुत किसी को मार रहा है, तो मारने से समझ में आता है बड़ा क्रूर व्यक्ति है, मारता रहता है सदैव, या कभी को हमेशा दूसरे की निंदा करता रहता है, तो समझ में आता है बड़ा अहंकारी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की निंदा करता। तो उसके कार्यों से, उसके इंद्रियों के कार्यों से उसका स्वभाव पता चलता है, नारद मुनि कहते हैं। इसी तरह उसके मन में जो प्रभाव हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, उससे उसके पूर्व जन्म का पता चलता है, नहीं तो कहां से आ सकती हैं इच्छाएं। तो कहते हैं उससे उसके पूर्व जन्म का पता चलता है। और फिर वो सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हैं कि कैसे मन बहुत सारे चीजों को, प्रभावों को लेकर आता है। मन में बहुत सी चीजें होती हैं, सबसे पहले मन में होता है बहुत सारे प्रभाव पूर्व जन्म के कार्यों के, दूसरा होता है मन में इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और बहुत सारे विचार आते हैं। तो अपूर्ण इच्छाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, और पूर्व अनुभव है मन में, ये नारद मुनि कहते हैं कि ये सब पहले का अनुभव है। और इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कभी कभी स्वप्न में आप क्या देखते हो, कोई ऐसी चीज देख लेते हो जो आपने कभी देखी नहीं। नारद मुनि कहते हैं कोई ऐसी चीज जो आपने कभी जीवन में नहीं देखी, तो कैसे स्वप्न में आती है? नारद मुनि कहते हैं ऐसे नहीं, कभी ना कभी आपने देखी है, कहीं ना कहीं देखी है, और इसीलिए वो आपके स्वप्न में आती है। तो ये प्रमाण है कि हमारा मन पहले से चला आ रहा है, पहले के प्रभावों को, पहले के विचारों को लेकर आता है। तो इससे पता चलता है कि कोई तो चीज है जो जोड़ती है पिछले जन्म को इस जन्म से, और वो है सूक्ष्म शरीर। तो इस तरह नारद मुनि वर्णन करते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं। और फिर वो आगे वर्णन करते हैं कि जैसे एक कीड़ा होता है, वो एक पत्ते को छोड़कर दूसरे पत्ते पर जाने से पहले दूसरे पत्ते को पकड़ लेता है, तब पहला पत्ता छोड़ता है, कैटरपिलर उसको क्या कहते हैं हिंदी में। कोई प्राणी देखा आपने जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, चलता रहता है, तो जब पहले वो दूसरे पत्ते को पकड़ लेता है फिर पहले पत्ते को छोड़ता है। तो नारद मुनि कहते हैं इसी तरह हम पहले अपना दूसरा जीवन बना लेते हैं, दूसरा शरीर तैयार कर लेते हैं, फिर पहले शरीर को छोड़ते हैं। कैसे कर लेते हैं? अपने कार्यों के द्वारा। तो जब जो प्रकार के कार्य हम इस जीवन में कर रहे हैं वो हमारा दूसरा शरीर बना रहा है। जैसे एक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने कहा कि आप ही आपके भविष्य को बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ एक उन्होंने वाक्य कहा, आप ही भविष्य को बनाने वाले हैं। तो ये सही है, लेकिन उनका कहना था कि आप इस जन्म में भविष्य को बनाने वाले। नारद मुनि कह रहे हैं हम आगे का भविष्य बनाते हैं, भविष्य मतलब अगला जन्म। ये जन्म तो हमारा वर्तमान है, बन चुका है, इसको क्या बदल सकते हैं आप? ये शरीर को हम चाहें तो भी नहीं बदल सकते, ये शरीर हमारा वर्तमान है और ये वर्तमान आया है पूर्व के कारण, लेकिन अब भविष्य को बनाना है, और भविष्य बनता है अपने कार्यों से। तो इसलिए राजा प्राचीन परिषद को कहने लगे कि आपको अभी सब छोड़ना चाहिए, ये सब छोड़कर आप भगवान की भक्ति कीजिए। तो राजा को समझ में आ गया जब नारद मुनि ने इतनी अच्छी तरह से समझाया, और फिर जब नारद मुनि ने देख लिया कि हाँ अब ये ठीक है, समझ गया, अब ये छोड़ देगा, तब नारद मुनि वापस चले गए। वर्णन है कि वो सिद्धाश्रम वापस चले गए, तो प्रभुपाद या सिद्ध लोक वापस चले गए। तो नारद मुनि वहां गए तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्ध लोक के निवासी हैं, और सिद्ध लोक के निवासी अंतरिक्ष में, आकाश में विचरण कर सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्ध लोक के निवासी हैं। कल किसी ने प्रश्न किया था कि उनका घर कहाँ पर है, तो घर है नहीं, प्रभुपाद कहते इससे प्रतीत होता है कि शायद वो वहां रहते हैं, सिद्ध लोक के निवासी, क्योंकि सिद्ध लोक वापस चले गए ऐसा लिखा, तो वहां रहते हैं। तो नारद मुनि वापस चले गए, और अब राजा प्राचीन परिषद ने सोचा कि जो नारद मुनि ने कहा वो सही है। तो अभी तक पुत्र वापस नहीं आए थे, वो तपस्या कर रहे थे, ये राजा थे, तो अब इनके लिए दुविधा है, राजा के रूप में इनको राज्य करना है, प्रजा को ऐसे ही छोड़कर जा नहीं सकते, वो भी उनका कर्तव्य है। लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि ने कहा अभी अभी सब छोड़ो, और लड़के आए नहीं हैं, तो क्या करें? हमारे सबके जीवन में भी ऐसी दुविधा बहुत बार आती है ना, बस भक्ति करना है लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ लड़के का, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक लड़का सेटल नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। तो उस समय राजा प्राचीन भरिषत ने महत्व दिया नारद मुनि के उपदेशों को कि नहीं, जीवन का उद्देश्य वो है। तो इसीलिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो तुरंत राज्य को त्यागेंगे। तो उन्होंने अपने पुत्रों के लिए एक संदेश रख दिया मंत्रियों के पास कि कैसे राज्य चलाना है, कैसे राजा के रूप में आपको सब प्रजा की रक्षा करनी है, ये सब उन्होंने लिखकर रख दिया सबके लिए, अपने पुत्रों के लिए संदेश दे दिया। और फिर उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जाने से पहले उन्होंने सारी व्यवस्था की कि हर व्यक्ति अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करके भगवान की भक्ति कर सके। तो ऐसी उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, और फिर राजा प्राचीन परिषद ने अपने राज्य को त्याग दिया। हालांकि उनके पुत्र आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि जब तक पुत्र आएंगे क्या निश्चितता है कि वो बने रहेंगे या उनका शरीर ठीक होगा, वो भक्ति कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत त्याग दिया और फिर वे वन में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ऐसा इस अध्याय में वर्णन किया गया कि किस प्रकार राजा प्राचीन बरीहिषद सब कुछ सुनने के बाद भी अभी भी तैयार नहीं थे, तो नारद मुनि ने और एक कथा सुनाकर ज्ञान देकर सीधे कहकर उनके मोह को तोड़ा और उनको फिर भगवान की भक्ति में संलग्न होने की प्रेरणा दी। और ऐसे जब वो भगवान की भक्ति में लग गए, चले गए सब कुछ छोड़कर, और फिर उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसा कहकर इस कथा के सुनने का फल फिर मैत्री मुनि विदुर को देते हैं कि विदुर से कहते हैं कि जो भी इस कथा को कहता है, दूसरों को सुनाता है या जो भी सुनता है, निश्चित ये जो जीव का बंधन है इस जगत में उससे मुक्त हो जाता है। और वो कहते हैं कि मैंने ये कथा अपने गुरु से सुनी है और इस कथा के द्वारा, इस कथा के श्रवण के द्वारा निश्चित भव बंधन कट जाता है। तो ऐसा कहकर वो इस अध्याय को समाप्त करते हैं। और फिर अब अगले अध्याय में प्रचेताओं का वर्णन आएगा कि उन्होंने कैसे कार्य किए, और फिर नारद मुनि का उपदेश। ये दो अध्याय इस चौथे स्कंद के अंतिम अध्याय हैं। कल उन पर चर्चा